खुदावन के जलाली और मुकद्दस में नाम में आप सबकी सलामती हो। सो आए हम सब खुदावंद अपने खुदा के हजूर झुकें और अपने लबों से जब तक हम जिंदगी की सांसें रखते हैं सदा देख कर उस खुदावन खुदा की हम्द सताइश और बुजुर्गी करते रहें, क्योंकि रास्तबाजों के लिए खुदा की हम्द और सताइश करना बहुत ही बरकत का बायस है। तो आए हम खुदा के हुजूर झुकें और उसकी तारीफ और उसके कलाम को अपनी तरबियत और नसीहत के लिए चाहें। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, हम तेरे शुक्रगुजार हैं यीशु मसीह के लिए जो खुदा खुदा दाऊद की नस्ल में से आया ताकि उसके वसीला से दुनिया का हर एक कबीला नजात, बरकत और मुहाफजत और तेरी नेमतों को हासिल करे। और तूने कहा कि जो कोई तेरा इकरार करेगा वो जमीन पर भी और आने वाले जहां में भी बरकत का और बहुत सी नेमतों का वारिस होगा। लश्करों के रब, आई हुई तमाम माओं के लिए, बहनों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों, नौजवानों के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। आज हम जो कुछ भी तेरे कलाम में से सीखें सबकी जिंदगियों में खुदावन बाकसरत बरकत का बायस ठहरे। सारा जलाल तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम को मिले। उसी के पाक और जलाली नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। इससे पहले कि हम कलाम खुदा में से देखें इफिसियों 4 बाब उसकी 11 और 12 आयत में से आपको एक बात ये सच याद दिलाना चाहता हूं कि आज से बहुत बहुत हजारों साल पहले जब खुदावन खुदा का कलाम इब्राम पर, जिसे अब इब्राहाम के नाम से जाना जाता है, उस पर जाहर हुआ तो खुदावन खुदा ने उससे वादा किया था कि मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा और तुझे बायस बरकत ठहराऊंगा। खुदा ने ये वादा इब्राहाम से किया था और फिर खुदा ने यह भी वादा किया था। यह वादा हमें मिल सकता है पदेश 12 बाब उसकी 3 आयत में। और खुदा ने इब्राहाम से कहा था, जो तुझे मुबारक कहे उनको मैं बरकत दूंगा और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा और जमीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। ये बात, ये सच खुदावन खुदा ने इब्राहिम से कहा था। इसलिए हम ईमानदारों पर हम कह सकते हैं कि ये बरकत का बायस होगा कि अपनी दुआओं में हम बनी इसराइल कौम की सलामती और उनके लिए बरकत चाहें, क्योंकि खुदा जब जो कुछ भी अपने कलाम में कहता है तो उसे करके दिखाता है। खुदा इंसान नहीं के झूठ बोले। इसलिए खुदा ने कहा है कि जो कोई इब्राहिम के खानदान यानी कि बनी इसराइल कौम के लिए बरकत चाहेगा उसको मैं बरकत दूंगा। इसलिए जब कभी भी आप दुआ में झुकें तो इसराइल के लिए बरकत चाहें, खुदा की हफाजत चाहें, खुदा का कुदरत वाला हाथ चाहें और सबसे बढ़कर दुआ करें कि खुदा बनी इसराइल के कौम की आंखों को खोल दे, क्योंकि जिस दौर में से हम गुजर रहे हैं बहुत से लोगों ने अभी तक मसीह का यकीन बनी इसराइल कौम में से नहीं किया। तो हम दुआ कर सकते हैं कि खुदावंद उनको बरकत दे, उनकी आंखों को खोले ताकि वो खुदा के मसीह यस्सु को जाने। तो ये बात चाहता था कि आप तक पहुंचाऊं। तो मेरे साथ निकालें नए अहदनामा में से इफिसियों के नाम पालूस रसूल का खत, उसका 4 बाब उसकी 11वीं आयत से 12वीं आयत तक आपके लिए पढ़ूंगा। आप सोचते होंगे कि पादरी साहब क्यों पासबान की खिदमत पर, उसके करदार पर, उसके काम पर, उसके बोल चाल पर, उसकी जिंदगी पर इतनी गौर व फिक्र कर रहे हैं। ये बात बहुत ही जरूरी है क्योंकि कलामे खुदा में जब हम इब्तदा ही से देखते हैं कि खुदा खुद अपने लोगों की पासबानी करता आया है, पासबानी से मुराद यानी के पासबान, पासबान वो होता है जिसे पादरी या निगाबानी या देखभाल या फिक्र करने वाला हो। सो खुदावन खुदा ने पासबान के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी क्या की है, उस पर फर्ज की है, उस पर ये जिम्मेदारी ला दी है। इसलिए पासबान की खिदमत आसान खिदमत नहीं। पासबान का नाम अपने नाम से जोड़ लेना तो बहुत आसान है, लेकिन उसके काम को, उसकी खिदमत को समझना और सर अंजाम देना बहुत ही कठिन काम है। इसलिए खुदावन खुदा अपने कलाम में पालूस के वसीला से यूं फरमाता है, और उसी ने बाज को रसूल और बाज को नबी और बाज को मुबशर और बाज को चरवाहा और उस्ताद बना कर दे दिया। हमने इसमें से ये सीखा था कि खुदा ने जो भी चीज़ बनाई है, जो भी शख्सियत पैदा की है, जो भी जानवर बनाया है, अगर खुदा ने समंदर तैयार किया, अगर खुदा ने बादल तैयार किए, अगर खुदा ने सूरज चांद सितारे बनाए, तो उन सब का बनाने का और उन सब को मुकर्रर करने का, लफ्ज़ मुकर्रर करने का या मखसूस करने का मकसद यही है कि वो खुदा के काम को और उसकी मर्जी को पूरा करे। मिसाल के तौर पर जब हम पैदाइश की किताब को देखते हैं तो इब्तदा में क्या था, खुदा ने इब्तदा में जमीन व आसमान को पैदा किया, और जमीन वीरान और सुनसान और गहराव के ऊपर अंधेरा था, और खुदा की रूपानियों की सतह पर जुम्बश करती थी, और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। तो तारीकी में खुदा ने रोशनी को मुकर्रर किया, या कह सकते हैं मखसूस किया कि वो तारीकी को दूर करे। जो कुछ भी खुदा ने बनाया है, पानी, मछली, रेंगने वाले, उड़ने वाले जानवर, इंसान, चरिंद, परिंद, हवा के, पानी के, जंगली जानवर, और जो कि जो भी चीज़ें हैं, उन सब को बनाने का खुदा का मकसद है कि वो अपने उस काम के मुताबिक जिसके लिए मुकरर किए गए हैं उसको पूरा करें। ज़मीन खुदा ने फल देने के लिए, ज़मीन खुदा ने फल देने के लिए तैयार की। समंदर खुदा ने मछली के तमाम पानी के तमाम जानवरों को संभालने के लिए तैयार किया। आसमान खुदा ने तैयार किया कि वो हवा के उड़ने वाले परिंदों को क्या कर सके, जगह दे सके, और फिर सूरज चांद सितारों को इसलिए मुकर्रर किया कि रात को चमके, चांद रात को रहनुमाई करे, सूरज दिन को गर्मी दे ताकि उससे सब्जियां, फल, गंदम और दूसरी चीजें पकें। तो यहां पर खुदा का बंदा पालूस रसूल यही कहता है कि उसने बाज को रसूल, बाज को नबी, बाज को मुबशर, बाज को चरवाहा यानी के पादरी, यानी के रहनमा, यानी के लीडर, कियादत करने वाला, इसलिए मुकरर किया कि खुदा की मर्जी को पूरा करे। सो बनी इसराइल कौम में लफ्ज चरवाहे को जब हम देखते हैं तो चरवाहे का लफ्ज जब बनी इसराइल कौम में देखते हैं, उनके रवाज, उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, तो ऐसे शख्स की तरफ इशारा है जो अपनी भेड़ों की, अपने माल की देखभाल करता है, इस हद तक कि वो अपने उन जानवरों को ज़्यादा अहमियत या उनकी ज़िम्मेदारी अपने कंधे पर रखता है। दाऊद की ज़िंदगी में हमने देखा कि चरवाहे का एक करदार, और दाऊद की ज़िंदगी में चरवाहे का करदार कुछ इस तरह नज़र आता है कि वो अपनी भेड़ों की हफाजत के लिए, जंगली जानवरों से भी भिड़ जाने के लिए, लड़ने के लिए क्या है, तैयार है। बेशक वो खौफज़दा है, लेकिन उसके नाम के साथ कि वो एक चरवाहा है। चरवाहा क्या करता था, बा दिलो जान अपनी भेड़ों की देखभाल करता था, और बहुत दफा कहा जाता है कि अपनी जान की बाजी तक लगा देता था अगर खतरा उसे या उसकी भेड़ों को उसे लगे कि उसे खतरा है। चरवाहे की खिदमत। हम देख सकते हैं कि जब यीशु मसीह की पैदाइश होने वाली थी तो सारा शहर मगन था, खुशियों में, कुछ अपने घरों में, कुछ सर्दी की वजह से अपने घरों में थे, अपने कारोबार की वजह से अपने घरों में थे। लेकिन चरवाहों के बारे में हमें क्या जिक्र मिलता है? चरवाहे कहाँ पर थे? जब हम देखते हैं तो बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि चरवाहे बियाबान में थे, वो मैदान में क्या कर रहे थे? मेरे साथ आप इस आयत को देख सकते हैं, लूका की इंजील उसके 2 बाप उसकी 5वीं आयत में, जब यीशु मसीह की पैदाइश होने वाली थी, यहाँ पर हमें सही चरवाहे की जिंदगी की क्या करते हैं कि जिम्मेदारी के बारे में पता चलता है। और यहाँ पर यूं लिखा है, लूका 2 बाप उसकी 8 आयत, उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगाहबानी कर रहे थे। चरवाहे की खिदमत ये नहीं कि वो दिन को की और बात खत्म। बनी इसराइल कौम में चरवाहों की जो खिदमत होती थी, बहुत दफा वो अपने जब माल को चराने के लिए, गल्ले को चराने के लिए बियाबान में या किसी इलाके में दूर निकल जाते, तो वो वहीं पर उनकी क्या करते, हिफाजत का इंतज़ाम करते, उनके खाने का इंतज़ाम करते, उनकी हिफाजत के लिए हर तरह का वो इंतज़ाम करते ताकि उन्हें किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे। यसु मसीह ने जब देखी हालत बनी इसराइल कौम की, तो उसने बनी इसराइल के कौम के चरवाहों पर क्या किया? अफसोस किया। अफसोस किया कि चरवाहों ने अपनी खिदमत को तर्क कर दिया, चरवाहों ने अपनी भेड़ों की पासबानी करना छोड़ दी। और इसीलिए हिजकियल 34:1-12 हमें इसी बात की तरफ इशारा करती है कि खुदावंद खुदा ने कहा कि इसराइल के चरवाहों के खिलाफ नबूवत कर, हाँ नबूवत कर, उनसे कह के खुदावंद खुदा चरवाहों को यूं फरमाता है कि इसराइल के चरवाहों पर अफसोस जो अपना ही पेट भरते हैं, क्या चरवाहों को मुनासिब नहीं कि भेड़ों को चराएं? ऐसा वक्त आ गया कि उन्होंने अपनी भेड़ों को चराना छोड़ दिया। इसलिए चरवाहे के कंधों पर बहुत ज्यादा बोझ है। और अगर हम यहूदी चरवाहों को देखें, यानी कि रबियों को देखें, पासबानों को देखें, फरीसियों और फकीयों को देखें, तो उन्होंने वाकया ही ऐसा किया। मत्ती की इंजील 23वें बाप में हमें यीशु मसीह के मुबारक लबों से निकले हुए ये लफ्ज मिलते हैं कि अफसोस तुम पर, 7 दफा खुदावंद यीशु मसीह ने उन पर अफसोस किया, उनकी बेदिली पर, उनकी नाफरमानी पर, उनकी गैर जिम्मेदारी पर कि उन्होंने जिम्मेदारी नहीं ली, उनकी क्या कह सकते हैं सख्त दिली पर, उनकी बरगश्तगी पर, उन्होंने खुदावंद अपने खुदा को जिस तौर से पूजना चाहिए, इबादत करना चाहिए, नहीं की, और उनकी अनकारी पर और उनकी मजहब परस्ती पर जो सिर्फ और सिर्फ उनके गिर्द घूमती थी कि वो अपने आप को बढ़ाना चाहते थे। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी में ये नमूना दिया। जब हम मत्ती की अंजील को देखते हैं तो वहां पर 9वें बाप में खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को ये जिम्मेदारी दी और शागिर्दों को ये जिम्मेदारी दी और उनसे कहा, जो लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, जो पढ़ सकते हैं वो पढ़े, नहीं तो सब गौर से सुने। मत्ती की अंजील उसका 9:35। खुदावंद यीशु सब शहरों और गांव में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी दूर करता रहा। आप सबको याद होगा कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब पहली दफा हैकल में जाकर सहीफ़ाए खुदा के कलाम को, सहीफ़ाए नबिया नबिया नबियों के सहीफे को खोला, तो यसाया नबी का सहीफा यीशु मसीह के सामने आया। यहाँ पर लिखा था कि खुदावन का रूह मुझ पर है, उसने मुझे इसलिए चुना कि मैं गरीबों को खुशखबरी, अंधों को भनाई और कैदियों को रहाई और कुचले हुओं को आजादी बख्श, और खुदावंद के सारे कलाम की क्या करूं, मनादी करूं। तो यीशु मसीह मनादी करता रहा, कमजोरों को, कैदियों को, अंधों को, बीमारों को क्या करता रहा, रहाई बख्शता रहा। और जब यीशु मसीह ने देखा, 36वीं आयत में, और जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वो उन भेड़ों की मानद जिनका चरवाहा ना हो, खस्ता हाल और परगंदा थे। तो खुदावन खुदा ने इन लोगों को देखा कि वो चरवाहों के बगैर हैं। यहाँ पर यीशु मसीह बात कर रहा है कि उन उस्तादों के बगैर जो रूहानी जिम्मेदारी उठाते हुए जिम्मेदार बने, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ना संभाली। खुदावंद यीशु मसीह को उन लोगों पर तरस आया, और तब उसने अपने शागिर्दों से कहा कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। फसल से मुराद यानी कि लोग बहुत ज्यादा है जिनको जरूरत है कि उनकी देखभाल की जाए। क्या कभी आपने देखा है कि कोई फसल उगाए और फिर उसे छोड़ दे कि उसे जंगली जानवर, मिसाल के तौर पर अगर हम मकई लगाएं तो मकई को बर्बाद करने वाले में से सबसे ज्यादा जानवर कौन सा है? तेज गीदड़। क्या कोई आपने किसान देखा है कि वो मकई लगाए और उसके बाद अपनी फसल को जानवरों के हाथ, गीदड़ों के हाथ में बर्बाद होने के लिए छोड़ दे? हरगिज नहीं। तो यीशु मसीह ने कहा फसल तो बहुत है यानी कि लोग बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उनकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है। जैसे फसल की देखभाल करने की जरूरत है, वैसे ही यहाँ पर यीशु मसीह फसल से मुराद कह रहा है कि लोग। लोग फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े। मजदूर किन को कहा गया है? वो लोग जो खुदा मुकरर करेगा कि खिदमत का काम किया जाए। मजदूर थोड़े हैं। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा, पास फसल के मालिक की मिन्नत करो। मालिक कौन है? खुदावंद खुदा। मिन्नत करो, दरख्वास्त करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेजे। और अगले ही हिस्सा में पता चलता है यीशु मसीह ने अपने 12 शागिर्दों को मुकरर किया कि जाकर खुदा का कलाम सुनाएं, उनको ये जिम्मेदारी दी। सो चरवाहे के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सबसे पहली बात कि उसकी जिम्मेदारी है कि कलाम सुनाए। इसलिए आज के दौर में पासबान की खिदमत करते हुए मुझे दिन रात आप सबकी फिक्र है। बेशक आपको अपनी बहुत सी ज्यादा फिक्रें हैं, मुझे सबसे ज्यादा खुदा के कलाम को मद्देनजर रखते हुए आप सबकी फिक्र है दिन रात के। मेरे भाई, मेरे बहन, कलीसिया कैसे हैं? क्या कोई गलत तलीम तो उनकी सोचों को बदल तो नहीं रही? क्या कोई दूसरी अबलीसी शैतानी तस्वीरें उनको घेरे हुए तो नहीं? तो चरवाहा होते हुए मेरी हर रात हर दिन यही दुआ है उन तमाम दूसरे ईमानदारों के साथ के खुदावंद आपकी रूहों की देखभाल करे। तो आज हमने चरवाहे के बारे में चंद एक बातें सीखी। आने वाले दिनों में हम और ज्यादा सीखेंगे, पासबान के किरदार के बारे में देखेंगे कि हमें आज के दौर में कैसा पासबान होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। सो खुदावंद आज आप सबकी रहनुमाई करे और खुदावंद का इत्मीनान आप सबके साथ हो। और मेरे लिए दुआ करते रहें कि आपके लिए मैं ऐसा चरवाहा बनूं जो खुदावंद की मर्जी को पूरा करने का वसीला बनूं, जो आपकी रूहानी खुराक को आप तक पहुंचाने के लिए खुदावंद की खिदमत को अंजाम दूं। क्योंकि मुझे सवाल किया जाएगा कि तूने अपनी जिम्मेदारी को किस तरह किया, इसलिए मेरे लिए दुआ करते रहें। मैं आपके लिए दुआ करता हूं कि मैं अपनी खिदमत को पूरे ईमान और पूरी जिम्मेदारी से पूरा कर सकूं, ताकि आप सबकी तरक्की हो। खुदावंद आपको बरकत दे।